موضوع کانفرنس آپ کے سامنے ہے. صرف کانفرنس سے یقیناً ذہن تو بنیں گے لیکن ہمیں اس کے گراس روٹ لیول کی طرف اور مسائل کی طرف جب تک ہم توجہ نہیں دیں گے ہماری مشکلات حل نہیں ہوگی. آج بھی ابتدا سے لے کر اب تک جو گفتگو ہوئی ہے اس میں جو پاکستان کے اندر اتحاد وحدت اور امت کی اس وحدت کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے اگر کوئی گفتگو ہوئی ہے تو وہ شاید آگے میں امت کے برابر بھی نہیں ہے. بہت سارے موضوعات پر ہوئی ہے گفتگو لیکن جو اصل گفتگو ہے اصل موضوع ہے وہ ہے امت کی وحدت کو درپیش چیلنجز کا کیسے مقابلہ کیا جائے. جب آپ مرض کی تشخیص نہیں کریں گے تو علاج کیسے کر سکتے. ایک اس کی تشخیص ملی یکجہتی کانسیپٹ کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے لیکن اب تک ملی یکجہتی کانسیپٹ میں اس کا حصہ ہوتا. اس کی تشکیل اس کی فعالیت ساری چیزیں قبول لیکن گزشتہ ان دو سالوں میں ہم نے اس قوم کے اندر پاکستان کے اندر درپیش چیلنجز کے حوالے سے کیا رول پلے کیا ہے. آیا اس کا ہمیں کبھی تنقیدی جائزہ لیا صرف رپورٹیں چھاپنے سے یا صرف ایک کانفرنس کرنے سے ظاہر مسئلے کو حل نہیں ہوں. اس حوالے سے ہمیں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے کہ چیلنجز کیا ہیں اور ان چیلنجز کے مقابلے کے لیے ہمیں اس فورم کو کس طرح سے مضبوط بھی کرنا چاہیے مضبوط بھی کرنا چاہیے اور مؤثر بھی بنانا چاہیے. تب کہ عثمانی صاحب نے اس کو ایک موضوع چھیڑا بعض لوگوں نے اس کو اعتراض کیا بعض لوگوں نے اس کا جواب دیا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا کیا کہ کچھ سلجھتے مسائل کو انہوں نے چھیڑ کر کم از کم یہ بتا دیا کہ بھئی ہمارے درمیان اس طرح کے مسائل تو ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ علمی حوالے سے اگر دوسرے فرقے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ان مسائل کو اٹھائیں علمی حوالے سے گفتگو کریں بہت اچھی بات ہے. اگر اس کا کوئی ممکن ہے تو سب مل کر اس ممکن کو اپنی ضرورت آ جاتا ہے لیکن اگر صرف الزامات اور تہمتوں کی بنیاد پر تصورات کی عمارت ہمیں قائم کرنی ہے تو ظاہر ہے یہ نہ اپنے آپ سے اور نہ دین سے دیانتداری ہے. لہذا ہمیں ان موضوعات کے حوالے سے ضرور سوچنا چاہیے جن کی وجہ سے امت کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں مشکلات پیدا ہوتی ہیں. کون کہتا ہے کہ اختلافات نہیں ہیں؟ کون کہتا ہے کہ تمام فرقے بالکل ایک پیش پر ایک طرح سے کھڑے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. جب ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے مقابلے میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ مختلف جو موضوعات ہیں اور اختلافات ہیں ان اختلافات پر بیٹھ کر سوچیں ایک دوسرے کو سمجھیں. سمجھنے کا فورم یہ ہے جہاں پر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اب اگر میں اپنے کسی اور بھائی کو سمجھنا چاہوں تو اس بھائی کے دشمن کی زبان میں سمجھوں گا تو یہ میرے اندر کے نفاق کی علامت ہوگی. مجھے اگر اپنے بھائی کو سمجھنا ہے تو اس سے میں پوچھوں کہ تم کیا ہو. مجھ سے اگر کوئی مجھے پہچاننا چاہے تو مجھ سے پوچھے کہ میں کیا ہوں. اگر میرے کسی مخالف سے پوچھے گا تو وہ غلط بیانی کرے گا میرا تعارف اس طرح سے نہیں کروائے گا. اب جو اختلافات ہماری مشکل یہ ہے کہ ہر ملا نے ڈیڑھ انچ کی مسجد بنائی ہے اور اس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے اپنی دکان چمکانے کے لیے دوسروں کو انڈرسٹیمیٹ دوسروں کو متہم دوسروں پر الزامات اور دوسروں کی تکفیر تشدید اور پھر قتل و غارت گری کی وہ نوبت آتی ہے کہ الامان والحفیظ. ابھی جب ہم یہاں پر آئے بہت سارے صحابی دوست ملے کہا کہ بھائی آخر ان گفتگو کا فائدہ کیا ہے جب آپ عملی طور پر میدان عمل میں اس کی مخالفت کرتے ہیں. اور بات صحیح ہے اگر ہم اس طرح کے فورمز میں اتنے معتبر چہروں کو جمع کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ایک سعادت ہے اور اس سعادت کی بنیاد دین ہے دین کی محبت ہے. اب اس کا استفادہ کیسے ہونا چاہیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اب بھی آج اس فورم میں بھی کہہ رہا ہوں اور میں نے ٹی وی پر بھی یہ باتیں کی ہیں کہ آؤ ہمارے جو علمی مراکز ہیں ان مراکز کے درمیان رشتے ہم بنائیں. آؤ ایک دوسرے کے مدارس میں ایک دوسرے کے علماء کو بھیجیں تدریس کے لیے وہ آئے تدریس کریں بتائیں کہ بھائی ہم بھی اس معاملے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ نظریہ رکھتے ہیں. جہاں پر دلیل کا اختلاف ہے وہاں پر قبول کر لو. دلائل کی دنیا میں دلائل کی جنگ ہوتی ہے اسلحے کی نہیں. مجھے افسوس سے یہ دیکھنا پڑتا ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنے فرقے ہیں ان میں سے है, कोई फिरका बचा हुआ नहीं है, तो कौन बच गया? कुफर वाले। आज हमें कुफर वालों को कहना चाहिए भाई हम मुसलमान हो गए, बाकी तुम सब तो काफिर हो गए, इसलिए तुमने खुद एक दूसरे को काफिर करार दे दिया है। अब ऐसी सूरत हाल में जहां पर एक तकफीर की मुहिम है, जहां पर तशदीद की मुहिम है, जहां पर नफरतों को ज्यादा से ज्यादा बरंगेज़ करके लोगों के जज्बात का इस्तेहसाल करके अपनी जेबें भरने की मुहिम जारी है, वहीं पर कुछ कुवतों को ऐसा होना चाहिए जो इस आयत के मिसदाक बनकर कुंतुम खैरुम मिन उखिजत बिन्नास, वाकई बेहतरीन उम्मत की हैसियत से उन मौजूदात को उठाएं जिनके नतीजे में इख्तलाफात खत्म हो, जिनके नतीजे में साजिशों के चेहरों से निकाब उलटा जाए, जिसके नतीजे में उम्मत के अंदर यकसुई और वहदत पैदा हो, और उसके लिए इस तरह की महफिलों में इन मौजूदात को जरूर होना चाहिए, जरूर उस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन इत्तेहाम की सूरत में नहीं, सिर्फ तोहमत और इल्जाम की सूरत में नहीं। मैं सिंपल सा सवाल रखता हूं, अगर कोई शख्स जो सुन्नी मुखालिफ हो, अगर सहाय सत्ता में से कुछ रिवायात को निकाल दें जिनको अहले सुन्नत के दानिशवर उलमा हदीसनाम भी नहीं मानते, कहते हैं कि इनका कोई एतबार नहीं है, इनकी कोई सनद मजबूत नहीं है, इनमें वतन के लिहाज से मुश्किल है, इनमें सनद के लिहाज से मुश्किल है, इनमें रिवायत रावियों के हवाले से मुश्किल है, उन्हीं रिवायतों को निकालकर अगर कोई कहे कि ये जमहूर अहले सुन्नत का नुक्ते नजर है, तो क्या यकीन और नहीं करेंगे और सब कहेंगे इसने ख्यानत किया। इसका मतलब यह है कि आपको किसी मतलबी फिक्र पर एतराज है, उसके जमहूर उलमा के नजरियात को सुने और उसको कबूल कर ले। अगर इस रविश के साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर यकीन फिक्रा पैदा नहीं होगा, मसाइल हल होंगे, कुर्बतें पैदा होंगी, लेकिन अगर एक ग्रोह उठे सिर्फ पैसे की बुनियाद पर, सिर्फ बाहर से आने वाली एक की बुनियाद पर दूसरे ग्रोह की तकसीर शुरू कर दे, दूसरे ग्रोह की तस्दीक शुरू कर दे, दूसरे ग्रोह पर इल्जामात की भरमार शुरू कर दे, और उसके नतीजे में फिर हम जो है उसकी कुश्त पर खड़े हो इस तरह की बातें करना शुरू कर दे, तो यकीनी तौर पर उससे कुरान का अदब पूरा नहीं होगा, उससे इस्लाम का अदब पूरा नहीं होगा, उससे उम्मत मुस्लिमों का जो तसव्वुर है वो तसव्वुर अपने नतीजे तक नहीं पहुंचेगा। लिहाजा हमें निफाक की दुनिया से दूसरों को भी निकालना चाहिए और खुद भी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा कोई काम हमारी आंखों के सामने न हो जिससे इस तरह की बुआ है। हम कुरान की आयत की रोशनी में हम कहते हैं कि जो हमारे मुश्तरकात है उन मुश्तरकात की बुनियाद पर अल्लाह ने मसीहियों को भी दावत दी है कि तुम भी आओ, तालो या कलिमत सवाई पैदा हो गई, उनके और तुम्हारे दरमियान अगर खुदा और तौहीद और अल्लाह की जात मुश्तरक है तो किस बुनियाद पर तुम करीब आओ, इस्लाम और कुफर, मुसलमान और ईसाई, शिया सुन्नी की क्या बात है? शिया सुन्नी के अंदर जो इख्तलाफात है अकीदती वाले से ठीक है, कुछ इख्तलाफात है अकीदे के इख्तलाफात, लेकिन फिक्ही वाले से इश्तराकात जैसे आदिल रूम साहब ने भी कहा बहुत ज्यादा है, तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो हम अगर इन मसाइल को हल करना चाहें तो फिर मिलिए जैसी काउंसिल के प्लेटफॉर्म से भी, और इसके अलावा भी हमें संजीदा इकदाम करने होंगे, और उन संजीदा इकदाम का तकाजा यह है कि हम एक दूसरे के मराकज में भी जाएं, एक दूसरे के इज्तमाआत में भी जाएं, एक दूसरे के इज्तमाआत में जाकर बताएं कि हम ये हैं, हमारे बारे में किसी गलतफहमी का शिकार न रहो। शियों की कुछ हसासियत है, अजादारी उनकी उनके लिए एक हसास मौजू है, इसी तरह से कुछ और हसास मौजूद उनके हैं। अब कोई अगर ये एतराज करे कि चूंकि ये इसकी वजह से इख्तलाफ पैदा होता है इसलिए उनको छोड़ दो, तो फिर कहीं पर भी आप किसी जगह खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि जो भी आपका मुखालिफ होगा आपकी हर चीज पर एतराज करेगा, नतीजतन आप भी कहीं पर स्टैंड नहीं ले सकते। आप एहतराम बाहमी की बुनियाद पर एक दूसरे से एक दूसरे के अकायद का एहतराम करते हुए अगर कोई मीलाद का कायल है तो उसके अकीदे का एहतराम करें, खुद बेशक न करें अगर नहीं करना चाहते, अगर कोई आजादारी का कायल है तो उसका एहतराम करें, उसको करने दें, खुद बेशक न करें, लेकिन अगर आप तजरुब के जरिए से माशरे की इस्लाह चाहेंगे, अगर आप तशद्दुद के जरिए से माशरे की इस्लाह चाहेंगे, अगर आप जोर और जबरदस्ती की बुनियाद पर माशरे की इस्लाह चाहेंगे और चाहेंगे कि आलमी या आपके इस खत्ते के अंदर इस्लामी हुकूमत कायम हो, तो जाहिर वो हाल ही है और आपके दुश्मन मुंह खोले खड़े हैं आपके दाखिली इख्तलाफात से मसाले को न कोई फायदा है और न कोई फायदा होगा, अगर फायदा होगा तो सिर्फ और सिर्फ उन ताकतों को होगा जो इस्लाम की वहदानियत से, इस्लाम के उम्मत के तसव्वुर से, इस्लाम की भड़की हुई तासीर से होकर है। लिहाजा उनके मफाद में काम करने से गुरेज करना हमारी शरई अकली और इज्तमाही और इलाही जिम्मेदारी है। इसकी तरफ हमें आना चाहिए और हमें उस निफाक से निकलकर लोगों के दरमियान भी वही बात करनी चाहिए जो हम इस तरह तीन महफिलों में करते हैं, जो बातों यही एतराज करते हैं। और अगर आप आम आखिर लोगों से पूछे ना, आम आखिर लोगों से, उनके सेहत में फौरन ये सवाल होता है कि ये दीनी लोग जो है जब आप में बैठते हैं गोरखा की बात करते हैं, जब मजमे में आते हैं, मार्केट में आते हैं, किश्तवाड़ पे आते हैं, वहां पर गोरखा की बात करते हैं। ये जो दोगानगी है इसको जब तक हम खत्म नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारी मुश्किल हल नहीं होगी। और ये मुश्किल हमारी से मरा जाती नहीं है, कौमी भी है, मिट्टी भी है, दीनी भी है और इस्लाम की मुश्किल भी है। इस मुश्किल से निकलने के लिए हमें पूरी यकसुई से इन बीमारियों की तशखीस और उन बीमारियों के इलाज की तरफ जाना होगा। और इलाज का रास्ता यही है कि हम उन मौजूदात का तायुन करें, गुफ्तगू भी करें, लिटरेचर भी ऐसा छापे जो मकबूल हो, जहां पर दूसरों की तोहीन नहीं बल्कि अपने अकायद के हवाले से दलील कायम करें, किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जो रविश इसको चल रही है, इस रविश पर अमल किया जाए तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल कोई नहीं है। अभी बहुत सारे लोगों ने यहां पर कहा कि भाई इतना ईरान में फैलावरियत है, इतना सऊदी अरब में फैलावरियत है, पाकिस्तान में क्यों है? इसलिए यहां पर किराए पर बिकने वाले लोग ऊपर से नीचे तक मौजूद है, पैसों पर बिकने वाले लोग ऊपर से नीचे तक मौजूद है। थोड़े से पैसे पर आसमान की ईमान, अपनी मस्जिद और अपना सब कुछ बेचने पर तैयार होने वाले लोग मौजूद है। अगर इसीलिए अपनी 1.5 इंच की मस्जिद के लिए हर एक कोशिश करता है कि किसी तरह से पैसे कमाए, चाहे उसके नतीजे में माशरे में अफरा तफरी किसी इंतहा को पहुंचे। मैं ऐसे बड़े फिरकावाराना लीडर्स को जानता हूं और उनका उनके हवाले से उनकी खत और खिताबत मेरे पास मौजूद है, जिसमें एक फिरके का बड़ा आलिम पसे पर्दा दूसरे फिरके के उस बड़े आलिम को लिखता है कि भाई मैंने फलां जगह इस मौजू पर गुफ्तगू की है, अब तुम जब आओ इससे ज्यादा बड़े इल्जाम आयद करना। और दूसरा जो है उसी तरह से इसको जवाब देता है, लेटर जो है पकड़े जाते हैं। इसका मतलब यह है कि पीछे लोग हैं ना काम करने वाले, तो हम कम अज कम इखलास का सबूत है। वो लोग जिन्हें अल्लाह ने दीन की बसीरत अता की है, दानिश अता किया है, कुरान का फहम अता किया है, उम्मत के दर्द से उनको आरास्ता किया है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। और यह फोरम इस वाले से बेहतरीन फोरम है। हमें इस वाले से अकीदती तौर पर, ज़हनी तौर पर, फिक्री तौर पर बिल्कुल वाज़ह और क्लियर होकर मैदान में आना चाहिए और इसके सदबाब की कोशिश करनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
बहुत शुक्रिया जनाब।